Prabhu, keine Ahnung, aber Danewad ho.
Dass all diese Dinge vorhanden sind.
Und ihr gerade wacht mir Dimag mein je Vichar aya.
Die Frage ist nur, ob wir wissen,
wie sari Baten hain
Gebrauch machen können. Wie sich das alles.
Hum jante hain ki ye sari cheeze isi prakar hain.
Auswirken muss.
अब सवाल यह है कि जब हम जानते हैं तो क्या हम इसका अनुभव कर सकते हैं, क्या हमारी जीवन में इसका कोई प्रभाव हो सकता है, क्या हमारी जिंदगी में क्या यह दिखाई दे सकता है, जाहिर हो सकता है, यानी हमारा उद्धार तो यहाँ पर है, पर क्या हमने उसका अनुभव किया है? क्या सिर्फ उद्धार को हमने विश्वास कर लिया कि यह सच्चा है? और देखिए, अगर हम ये सिर्फ ये जाने कि हमारी हीलिंग हो चुकी है, इसको आत्मिक तौर से जानना और इसका अनुभव करना, ये दोनों अलग बातें नहीं है, इनका इकट्ठा होना, एक साथ होना बहुत जरूरी है। जैसे कि कोई औजार बनाने वाला ये कह सकता है कि ये एकदम से प्रॉपर फिट होना चाहिए, ठीक तरीके से सेट होना चाहिए। और आज दोपहर को भी हम आप सबका बड़ा स्वागत करते हैं और हम आप सबको खुदावन की शांति मिले ऐसा बोलते हैं। इस शाम को और ये हम भाई बहनम की फिल्म दिखा सकते हैं और मैं जान सकता हूँ क्या कुछ लोग यहाँ पर हैं मेरे हमारे बीच में जिन्होंने ये फिल्म नहीं देखी, क्या हमारे बीच में कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कि ये भाई बहनम की फिल्म नहीं देखी? हाँ हाँ, मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं। अगर हम दाहिनी ओर से बाईं ओर की तरफ देखें तो करीब 15 से 20 लोग ऐसे हैं। और मैंने ये वाली फिल्म जो है करीब 70 बार से भी ज्यादा देखी है, क्योंकि उस वक्त मैं इसे एक शहर से दूसरे शहर तक अपने साथ लेकर जाता था। और मैंने इसको कई बारी देखा है और मैं फिर ये कहना चाहता हूँ, मैं तो इसे बार बार देखना चाहता हूँ, क्योंकि इससे मुझे इस बात की याद आती है कि खुदावन ने जो अच्छी बातें करी हैं, और ये बहुत सारी बातें आज भी अप्लाई करती हैं। अगर आप को कोई एतराज ना हो तो आज भी हम इस फिल्म को देख सकते हैं। इससे मुझे ऐसा अवसर मिलता है मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं, पर हमें धीरे धीरे चलना है क्योंकि ये समय जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाने वाला है। और उसके बाद हमारे पास 1 जनवरी 1988 आ जाएगी। नहीं नहीं, मैं मेरा कहने का मतलब है 1988 नहीं 1987। आप ये सोच सकते हैं कि मैंने जानबूझ के कहा, क्योंकि विचार तो स्वतंत्र होते हैं, पर बशर्ते कि वो अच्छे विचार हों। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं अपने दिल में मैं 1987 का जो सन है मेरे जीवन में खास है, पर इसके लिए खुदा का भी, परमेश्वर का भी उसके अंदर जो भाग है वो खास था, मैं ये जानता हूँ। और मैं इससे ज्यादा इसके बारे में बोलना नहीं चाहता और इसको प्रभु पर छोड़ दे दें और आगे के लिए प्रभु पर छोड़ दें। और जो चीजें आगे आने वाली है वो एक बारी फिर हमारे सामने मौजूद हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी बातें जो बताई गई थी वो शुरू की थी, बात की थी, पर वो हमारे आगे आ चुकी हैं। और इस तरीके से और भविष्य में भी आगे आने वाली बातें भी एक दिन हम पीछे मुड़कर देखेंगे और कह सकेंगे कि हम तो इन चीजों का इंतजार कर रहे थे, अब ये हमारे सामने से گزر رہی ہیں. ہم کہہ سکیں گے کہ آج یہ وچن ہمارے سامنے پورا ہو چکا اور ہم اس چیز کو جان گئے ہیں اور اس چیز کو مان گئے ہیں کہ پربھو اپنے وچن کو کامل رکھتا ہے, اس کو پورا کرتا ہے. اور اس لیے آج رات کو ہم یہ فلم دیکھیں گے اور اس کے بعد کل شام کو ہم وہاں بپتسمہ دیں گے اور پربھو بھوج دیں گے اور بدھوار کو ہمارا بھوج ہوگا. اور ان دونوں دنوں میں ہم سویرے اور شام, سویرے اور دوپہر دونوں سمے میں سبھا ہوگی پربھو کی اپستھتی میں, جس سے کہ ہم اور گہرائی سے پربھو کے وچن سے سن سکیں. اور اس سے پربھو کے اس پرارتھنا کے ساتھ کہ وہ اپنے وچن کو ہمارے اندر پورا کرے, کامل کرے اور ہمارے جیونوں میں اپنے وچن کو جیوتا کر دے اور ہر ایک کا اس کی یوجنا میں ستھان ہے کہ ہم ان دنوں میں بھی ہم اس کی یوجنا کا ایک انش بن جائیں, ایک انگ بن جائیں. اور اس سمے کی اور جب ہم آتے ہیں جبکہ پروفیٹک پارٹ ہوتا ہے, جبکہ بھوشوانی کا سمے آتا ہے, پھر وہ ہمارے کو ایک اچھی سمجھ دیتا ہے اور اپنے پوتر وچن کے بارے میں. ایک بار پھر ہم پرارتھنا کرتے ہیں, ہم ایک بار کھڑے ہو کر پرارتھنا کرتے ہیں. ہمارے سورگی پتا, اپنے سارے سچے دل سے میں تیرا دھنیواد کرتا ہوں کیونکہ تو نے ایسا افسر دیا کہ ہم اس سمے میں رہ رہے ہیں اور ان باتوں کو, ان الگ الگ باتوں کو دیکھ سکتے ہیں جو تیرے وچن سے سمبندھ رکھتے ہیں اور تیری یوجنا کو دیکھ سکتے ہیں تیرے لوگوں کے ساتھ. اور ہے پربھو, ہم اس وقت یہاں پر ایکت ہوئے ہیں تیرے نام میں, جس سے کہ ہم کسی اور کو دیکھنے کے لیے نہیں, کیول صرف تیرے کو دیکھنے, تیرے ملنے. اپنے وچن کو ہم سے بول اور ہمارے اور ساری 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 رکاوٹ کو دور کر, ساری غلط فہمیوں کو دور کر اور جتنا اداسی ہے اس کو دور کر, اس سب کو دور کر. اور پربھو جو ہمارے راستے کا روڑا ہے وہ ہٹ جائیں اور جو بری آتمائیں پربھاؤ ڈال رہی ہیں ہٹ جائیں اور نئی آتما ہمارے بیچ میں آ جائے. اور ہم کو اور جو تیری آرادھنا کرنے والے بچے ہیں ان کے ساتھ ہو. اور تیرے پربھو یسو مسیح کے نام میں مانگتے ہیں, ہر چیز کا دھنیواد کرتے ہیں یسو مسیح کے نام میں, آمین. آپ بیٹھ سکتے ہیں. ہم نے آلریڈی اب دیکھیے, ہم نے دیکھا جو کہ پربھو نے, خداون نے اپنے وچن میں وعدے کیے ہیں جو کہ سچے وعدے ہوتے ہیں اور وہ وعدے پورے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارا وشواس اور درڑ اور پکا ہو جاتا ہے اور ہم اس کے وچن میں ایک طریقے سے پوری طریقے سے سنلگن ہو جاتے ہیں اور ہم اس پر وشواس کرتے ہیں اور وہ وشواس کرنے یوگ ہے. ہم اس کے منہ سے وہ اپنے اس کے منہ سے کبھی کوئی جھوٹ نہیں نکلا, وہ تو اس کا ہر وچن سچائی ہے. اور اگر ہم غیر ایماندار بھی ہو جائیں, بے وفا بھی ہو جائیں, پر وہ ہمیشہ ایماندار رہتا ہے ہمارا خدا. اور آج ہم یہ کچھ باتیں بتانا چاہتے ہیں, یہ وچن میں تلنا کے طور پر ہم کچھ باتیں بتانا چاہتے ہیں. ہم نے پریرتوں کے کام اور اس کی 16 پریرتوں کے کام اس کے 16 ادھیائے کو ہم پڑھتے ہیں. یہاں پر بتایا گیا ہے, یہاں پر دیکھیے فلپی میں جو جیل ہے اس کے بارے میں بتایا گیا, یہاں پر ہم پڑھتے ہیں اور 16 اور 31 پریرتوں کے کام 16 اور 31 کو ہم پڑھتے ہیں. 16:31 میں لکھا ہے, انہوں نے کہا پربھو یسو مسیح پر وشواس کر لو تو تم اور تیرا گھرانہ ادھار پائے گا. اور دوسرا ٹرانسلیشن بتاتا ہے کہ تو اور تیرا گھرانہ بھی ادھار پائے گا. اور لوگ یہ کہتے ہیں جو اس بات کو کہتے ہیں और आज भी इस चीज का अनुभव कर सकते हैं कि यहाँ क्या कहा गया, क्योंकि उससे उनका सारा घर बच गया। और हम प्रभु का बड़ा धन्यवाद करते हैं अपने दिल से, पर उनके बारे में क्या कहें जिन्होंने आज की डेट में अगर हम लें, पर अगर ऐसा नहीं लगता कि कुछ लोग ऐसा विश्वास करते हैं, पर क्या क्या ऐसा हो कि एक बच गया और उसका पूरा घराना नहीं बचा, उधार नहीं पाया। मैं आज की तारीख में कह रहा हूँ, हम इसको कैसे लगा सकते हैं, कैसे यहाँ फिट कर सकते हैं, बहुत जल्दी से बताता हूँ। देखिए, और शैतान जो है हमारे को हमारे पर आक्रमण करता है, अटैक करता है और बताता है और कहता है कि तुम ठीक से विश्वास नहीं करते, क्या ऐसा कैसे है कि तुम्हारा बदलाव इस प्रकार से हो रहा है और एक के बाद एक चीजें हो रही हैं, और वो हमारे पर बड़े जोर से, और हम एक बार लास्ट में अपने आप से ये सवाल पूछते हैं, क्या हमने ठीक से विश्वास किया, क्या हमने ऐसा सिर्फ दिखावा किया कि हमने विश्वास किया। पर जब हम देखते हैं पवित्र वचन से, यहाँ पर जब हम देखते हैं घर घर में और हर एक जगह पर, हर एक परिस्थिति में, ये हर एक एक ये बात अलग हो सकती है, हर एक के केस में अलग हो सकती है। अब यहाँ पर ये बड़ी वचन अपना बड़ी सफाई से सच्चाई बताता, ऐसा ना हो कि हमारा सोचना सुनना गलत हो जाए। और पर हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि प्रभु अपने वचन पर खड़ा होता है, और आज भी लोग अपने वचन अपने अपने पूरे परिवार के साथ उद्धार पा सकते हैं, पर ये वचन आज भी वैलिड है। पर हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों सात और यह 16वीं आयत में लिखा है, पहला कुरिन्थियों सात और 16। मैं कुछ उसके ऊपर की आयतें भी पढ़ूंगा। मैं 14 आयत से पढ़ूंगा, पहला कुरिन्थियों 7:14।
Wenn jedoch der ungläubige Teil durchaus die Trennung will, so mag sich trennen. In solchen Fällen ist der Bruder oder die Schwester nicht sklavisch gebunden.
क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास ना रखता हो पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है, नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते हैं, अब तो पवित्र है, परंतु जो विश्वास नहीं रखता वो अलग होने दो। ऐसी दशा में यदि कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। यहाँ बताया गया, यहाँ लिखा है कि अगर जो विश्वासी नहीं है अगर वो अलग होना चाहे तो उसे अलग होने दे, उससे वो बहन या भाई किसी बंधन में नहीं है। अब देखिए यहाँ क्या देखते हैं, एक केस में तो ये अप्लाई करता है और दूसरे केस में ये अप्लाई नहीं करता। एक केस इस प्रकार से है, दूसरा केस उस प्रकार से, और दोनों बातें, दोनों परिस्थितियां इतनी इतनी करीब करीब इतने नजदीकी से पवित्र शास्त्र में लिखी गई है कि इतने पास पास लिखी गई है, जिससे हमको पता लगे कि हमारा, और ऐसा नहीं कि हर जगह ये बात हर जगह अप्लाई करेगी, यहाँ ये अप्लाई कर सकती है और वहाँ वो अप्लाई कर सकती है, हर एक की परिस्थिति अलग हो सकती है, हर एक परिस्थिति में उसका एप्लीकेशन अलग हो सकता है। मैं आगे पढ़ता हूँ, 16 आयत को पढ़ता हूँ, पहला कुरिन्थियों 7:16 में लिखा है, क्योंकि हे स्त्री क्या तू जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा लेगी, हे पुरुष तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा लेगा, हमने प्रेरितों के काम 16 बाब में पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यहाँ ऐसा लिखा है और यहाँ लिखा है, यहाँ क्या पढ़ते हैं, हे स्त्री क्या तू नहीं जानती कि तू अपने आदमी का उद्धार करा लेगी? पर मैं तो सोचता हूँ उसका तो उद्धार हो चुका है। पर ये देखिए, बात समझने की है कि यहाँ पर हरेक जगह केस टू केस अलग अलग परिस्थिति में, हरेक परिस्थिति में हर बात का अलग मतलब होता है। ऐसा नहीं कि एक वचन को पकड़ लें और उसको हर जगह लागू कर दें, पर नहीं, पर परमेश्वर के वचन को बैलेंस में, समानता में समझना बहुत जरूरी है। किसी को भी शर्मनाक दशा में नहीं डाल सकता प्रभु, क्योंकि जो उस पर विश्वास करता है। हम तो ये जरूरत है कि हम अपने आप को वचन के अनुसार प्लेस करें, अपने आप की स्थापना वचन के अनुसार करें, तब हमारे को वो चैन, वो आराम, वो शांति मिल सकती है जो प्रभु में है। जब ये ऐसा नहीं होता तब हम पर अशांति होती है, तब हमारे पर शांति या सलामती नहीं होती, पर हमें तो परमेश्वर में सलामती मिलती है और वो हमारे हरेक के जीवन में वो एक अलग तरीके से काम करते हैं। हम पढ़ते हैं पहला तिमोथियो 2, और देखिए मैं स्ट्रॉन्ग मेडिसिन आपको देने जा रहा हूँ जिससे कि हम चंगे हो सके। पहला तिमोथी उसका दूसरा अध्याय, पहला तिमोथी 2, 3 और 4 आयत, पहला तिमोथी 2, 3 और 4 आयत, मसीह यीशु के अच्छे अध्याय के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए अपने भर्ती वारने को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। पहला तिमोथियस 2, 3 और 4, ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी ये वो चाहता है सब मनुष्यों का उद्धार हो और सत्य को भली प्रकार से जान लें। देखिए प्रभु तो चाहता है कि सबका उद्धार हो, वो यहाँ ये कह रहा है, पर प्रभु जानता है कि प्रभु अपनी इच्छा में चाहता है कि सबका उद्धार हो, पर उसको पता है कि सबका उद्धार होगा नहीं। हमको तो अपने आप को उसकी आज्ञाओं में, उसकी मर्जी में ढालना होता है, तभी हमारा उद्धार होगा। तभी तो हम कहते हैं कि तेरी मर्जी पूरी हो आसमान पर भी और जमीन पर भी। यहाँ पर हम पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर तो प्रभु की जो इच्छा है वो तो उसकी इच्छा है कि सब के सब की के सब को सच्चाई मिल जाए और सबका उद्धार हो जाए। अब देखिए हम यूहन्ना 6 बाब को अगर हम पढ़ते हैं और उसकी 64 आयत को और 64 और 65 आयत को पढ़ता है, यूहन्ना 6 और उसकी 64 और 65, यूहन्ना 6 64 और 65, देखिए यहाँ कह रहा है, पर तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु पहले ही से ही जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन उसे पकड़वाएगा। और देखिए आगे क्या लिखा है, उसने कहा इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से ये वरदान ना दिया जाए तब तक वो मेरे पास आ ही नहीं सकता। और कई दूसरे अनुवाद ये प्रकाते हैं, वहाँ लिखा है कि मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक पिता उसे अपने पास ना खींचे। यहाँ देखिए, परमेश्वर के पास से खिंचाव होना चाहिए। ये उसकी इच्छा है कि हम सब बच जाएं, पर फिर भी वहाँ एक बुलाहट, एक खिंचाहट के ऊपर डिपेंड करता है। वो अंदर से क्या खिंचाव और किसी मनुष्य के अंदर उसके दिल में प्रभु के लिए क्या खिंचाव होता है उस पर डिपेंड करता है। फिर ये भी हो सकता है कि कई बारी लोग ये कह देते हैं, मैं इसलिए उसकी ओर नहीं बढ़ रहा क्योंकि अभी तक तो मेरा बुलावा नहीं आया, जिस दिन बुलावा आएगा उस दिन समझ जाऊंगा। पर अब देखिए खुदावन का जो कलाम है, ये जो बात कि जैसे ही हम वचन को सुनते हैं, जैसे ही वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनना ही ये बुलावट है, ये वो खिंचाव है। मैं सभी को ये सलाह देना चाहूंगा कि फिर अगर वो परमेश्वर की ओर नहीं जाना चाहते तो किसी भी मीटिंग में ना आए, क्योंकि इस प्रकार से किसी भी मीटिंग में आना खतरे से खाली नहीं होगा। अगर वो आकर के वचन सुन ले और उसके बाद उस वचन को टुकरा दें, उसको खिंचाव ना माने, और जो मीटिंग में जो सेव्ड नहीं होना चाहता, उधार नहीं पाना चाहता, वो मीटिंग में ना आए। केवल वही मीटिंग में आता है जो उधार पाना चाहता। अब देखिए उसके बाद उसका पूरा होना, और देखिए फिर उसके बाद में ये होता है कि जिस जिसको पिता बिलाता है वो परमेश्वर की ओर जाता है, और फिर वो बोलता है जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी अपने पास से नहीं निकालूंगा। देखिए परमेश्वर का अनुग्रह हम सब के लिए है। जो ऐसे ये बताया गया है और यूहन्ना एक में कि परमेश्वर ने, खुदावन ने उनको अपने बेटे और बेटियां बनने का अधिकार दिया क्योंकि उन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया। इस तरीके से खुदावन का वो खिंचाव, वो पुल, वो ड्राइंग, वो खिंचाव पैदा होता है। और इसीलिए हम ये जानते हैं। एक और आयत पढ़ते हैं, अब देखिए मरकुस से पढ़ते हैं, मरकुस बारह और उसकी 29 से 31।
Jesus antwortete, das erste ist.
यहाँ देखिए लिखा, यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है कि हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी आज्ञा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। हम नहीं जानते मैंने ये आयत क्यों पढ़ी, और हम जानते हैं कि हम एक दूसरे एरिया में जब जाते हैं वहां हमें बताया जाता है, हम प्रभु को अपने सारे मन से और आत्मा से प्यार करें और अपनी शक्ति से प्रार्थ करें। और देखिए और हम अपने पड़ोसी से भी अपने मानन प्यार करें। अब देखिए लूका, अब इस जरा ध्यान से सुने लूका 14 और 25 आज पढ़ेंगे, लूका 14:25। देखिए जो अभी हमने मरकुस से पढ़ा उसको ना भूल जाएं, अब लूका 14:25 को पढ़ रहे हैं और मरकुस को भी याद रखें। देखिए वहां पर 25 में बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, उसने पीछे मुड़कर देखा, अगर कोई मेरे पास आए अपनी पत्नी और बच्चों भाइयों बहनों को अपने अप्रिय ना जाने या भाई और बहनों को अपनी जीवन को भी वो मेरा चेला नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए यहाँ हमें प्रेम के बारे में बताया गया। मरकुस में तो बोला कि तूने अपने प्रभु से, अपने मन से और अपने तन से प्रेम करना है, और देख अपने और अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखना है। अब देखिए और भी बातें हम वहां पढ़ सकते थे। पहली आज्ञा जो थी इसमें ये वादा था कि अपने माता और पिता का आदर कर, जिससे कि ये तेरे साथ, जिससे तेरा तेरी आयु जो है, उम्र जो है वो बढ़ जाए। जब आप यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए वही वाला प्रभु उसी टाइप की आज्ञा को दूसरे तरीके से बता रहा है, जहाँ पर के प्रेम की बात नहीं आ रही, जहाँ पर प्रेम की बात नहीं समझ आ रही। मैं तो प्रेम करना चाहता हूँ, मैं तो इसीलिए यहाँ पर हूँ। पर अब देखिए यहाँ प्रभु कह रहा है कि मैं, और आपको भी कह रहा और हम सब से कह रहा है, पर कितनों पर यह बात लागू हो सकती है। वो कहता है कि अगर कोई मेरे पीछे होना चाहे और अपने अपने पति पत्नी बच्चों भाइयों और बहनों भाइयों और अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। मतलब अपने जीवन को भी हेट करे, अपने माता पिता भाई बहनों को, पति पत्नी को भी हेट करे, पर अगर हम पर हम उसके चेले होना चाहें तो हमें इन सब को छोड़ना पड़ेगा। अब ये दोनों बातें एक साथ कैसे लागू होती हैं, मरकुस वाली और लूका वाली? आज सुबह हमने इसके बारे में ऑलरेडी बात करी और प्रभु ने कहा, प्रभु ने बताया, मैं तो इस यहाँ पर बंटवारा कराने के लिए आया हूँ, जिससे के जो देखने, जिनके पास आंखें हैं वो अंधे हो जाएंगे और जो अंधे हैं वो देखने लगेंगे। और क्या वो हमारे बारे में बता रहा है? तब प्रभु ने कहा, तब पर अगर फरीसी पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा कि क्या हम पर लागू होती? उसने कहा हाँ, क्योंकि अगर तुम अंधे होते तो देख लेते, पर तुम आंखें होते हुए देख नहीं पा रहे हो। और वो तैयार नहीं थे इस बात के लिए कि वो प्रभु का पीछे चले, उसकी बातों को सुने। अब क्या होगा? अब मेरे और आपके बारे में क्या होगा? अब देखिए हम सब के बारे में क्या होगा? अगर प्रभु ये चाहता है और प्रभु का जो चुनाव है और प्रभु हमारे बीच में जब आता है, और जैसा कि अब्राहम के साथ हुआ था जो कि यूर और शेल्डिया में रहता था और दूसरी साइड में थे, यूफ्रेटस रिवर के दूसरी साइड में रहता था और दूसरे पर मैं दूसरे भगवानों की, दूसरे प्रभुओं को पूजता था, और वो और उसने कहा और उसके प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने, खुदा ने उससे कहा कि यहाँ से निकल और उधर जा, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा कि तुझे कहीं जाऊंगा। क्योंकि प्रभु के पीछे चलने का मतलब है किसी और चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो हमको अपने आप को उन चीजों से अलग करना है जो जो प्रभु को नहीं, जो प्रभु को नहीं मानते और प्रभु के पीछा नहीं चलना चाहते। यही एक तरीका है जिससे कि पॉसिबल है। और घृणा से मुझे एक और वर्ड सामने दिखाई दे रहा है पुराने नियम में से, जहाँ पर उसने कहा कि ये याकूब से तो मैंने प्यार किया और ईसव से मैंने घृणा किया। अब देखिए एक को प्रभु ने एक्सेप्ट किया और दूसरे को रिजेक्ट किया। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि जो प्रभु, यहाँ ये सवाल ये है कि प्रभु के पीछे चलने का मतलब ये है कि हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर प्रभु ने हमको बुलाया है तो जो भी जब हम अपने उन लोगों के पीछे चलते रहेंगे तो हम भी बैठकर उनके साथ नाश हो जाएंगे। और क्या हमें इस बात को समझना है कि एक आत्मिक निश्चय हमको लेना पड़ेगा, डिसीजन हमको लेना पड़ेगा कि प्रभु मेरे जीवन में पहला स्थान प्राप्त कर ले। पर देखिए आपके पास इतनी अद्भुत बात है, वो है सारी दुनिया हट जाए, सब कुछ हट जाए आपके पास से, पर जो सबसे ज्यादा बहुमूल्य है वो तो प्रभु है, वो आपके साथ है। अगर आपका संबंध प्रभु के साथ, अभी आपका संबंध प्रभु के साथ है, और अगर हम अकेले बैठ गए और बहुत सारा ज्ञान लेके बैठ गए तो हम खुद क्योंकि दूसरों को ये चांस नहीं मिलेगा कि वो अपना मन बना पाएं। इसलिए अगर हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो हमको देखकर दूसरे भी प्रभु के पीछे चल सकते हैं। अब देखिए इसके बीच में इसमें कूटनीतिक भी हो सकती है, और ये तो बड़े अच्छे शब्द हैं जो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, पर इसमें तो पर अगर आत्मिक बातों की बातें आती हैं, स्वर्ग की बातें आती, तब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको परमेश्वर का एक्सपीरियंस, खुदा एक्सपीरियंस चाहिए, तो अपने जीवन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। अपना डिसीजन इस प्रकार के बनाएं कि आपका जो निश्चय है, डिसीजन है, वो प्रभु के लिए हो, सबसे पहले प्रभु के लिए हो, क्योंकि जो प्रभु आपके इस डिसीजन को वो इज्जत देगा, और फिर और जो 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 पहले अलगाव के बारे में बताया गया, वो फिर आपके लिए, वो प्रभु में हो करके वो आपके लिए दोबारा से जुड़ जाएगा वो अलगाव। और पर अभी इस बात को बताने के लिए सोच लें, समझ लें, और 27 लूक 14 और 27 में कहता है, 27 में कहता है, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वो मेरा चेला नहीं हो सकता। देखिए ये किस प्रकार का क्रूस है, ये वो क्रूस है वो जब किसी को प्रभु को अकेला पीछे चलना पड़ता है, उस वक्त यही क्रूस बहुत भारी हो जाता है, क्योंकि अकेले उठाना पड़ रहा है। और देखिए कुछ तो ठीक चल रहा है पर बाकी ठीक नहीं चल रहा है, पर अपनों को पीछे छोड़ देना, अपनों को छोड़ देना, ये एक बहुत बड़ी सलीब है, बहुत भारी सलीब है, क्योंकि एक ऐसा सैक्रिफाइस है जो कि करना पड़ता है प्रभु के लिए, तब क्रूस का वजन और भारी हो जाता है, तब ये जो भार हमको उठाने पड़ते हैं, ये हमको उठाने पड़ते हैं, और जब तक कि कोई ऐसा नहीं करेगा तब तक वो मेरा चेला नहीं हो सकता। अब आप यहाँ सोच लीजिए कितनी डिफिकल्ट, कितनी कठिनाई भरी ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं, और देखिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, कोई भी उसने ऐसी परिस्थिति नहीं छोड़ी जिसमें कि उसने हर चीज के बारे में समझा, और जो कुछ भी हमारे विश्वास में चल सकता था, चाहे वो हमारे परिवार हो, उसने हर एक चीज के लिए कष्ट उठाया, हर एक चीज पर विजय पाई, जिससे कि हमें चैन मिल जाए, हमें आराम मिल जाए, हमें कुवत और शक्ति और सामर्थ मिल जाए। हम पढ़ते जाएं, लुका हमने पढ़ा, अब देखिए इफिसियों पढ़े, इफिसियों 5 को देखें, इफिसियों 5 को पढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए फिर लिखा है, और यहाँ जो वचन है जो पहला कुरिन्थियों से पढ़ा था, और इफिसियों 5 और उसको 5:25 को पढ़ें, 5:25 को देखें, लूका 14 को याद रखें, और लूका 14:25 को भी याद रखें। यहाँ देखिए इफिसियों 5:25 में क्या लिखा है, हे पतियों अपनी पति से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, अपने आप को दे दिया। अब मैं क्या करूं? अब यहाँ देखिए मुझे कौन सा काम दिया गया है, अब क्या करूं? देखिए खुदा का कलाम क्या बता रहा है, दोनों बातें सही हैं, दोनों बातों की अपनी जगह है, अपना स्थान है। अगर प्रभु अनुग्रह दे तो एक से दूसरे का प्रतिस्थापन हो सकता है, रिप्लेसमेंट हो सकता है, और तब उसके बाद हमारे जीवन में शांति हो सकती है और खुशी हो सकती है, हर एक घर में खुशी हो सकती है, पर उसके बाद उसका पूरा होना जरूरी है, पर तब ये होगी बात, तब ये बात लागू होगी कि आज इस घर में उद्धार आ गया। ये उद्धार वही ला सकता है जिसने हमें बुलाया, और वो है प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु, सिर्फ वही है। मैं नहीं जानता कि आपके साथ क्या है, मैं तो अपने बारे में कह सकता हूँ, मेरे को ये रास्ता निकालना पड़ा, क्योंकि कई परिस्थितियों में कई बारी कुछ बातें ऐसा लगता पूरी मैं नहीं पूरी कर सकता, शब्दों से पूरी नहीं कर सकता, पर केवल परमेश्वर को खुदावंत को आना पड़ता है और उसने उसे अगुवाई करके मुझे समझाना पड़ता है कि क्या करना है, कि उसकी जो इच्छा है उसकी जो मर्जी है वही पूरी हो। हमने उसके वचन को सुना, पहला कुरिन्थियों से हमने पढ़ा, पहला कुरिन्थियों 7:15 हमने पढ़ा था। अब देखिए आप क्या जानते हैं, क्या बहन या भाई क्या आप नहीं जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि आप एक दूसरे को बचा सकते हैं? आंसर तो बड़ा सिंपल है, अगर दोनों खुदावन की तरफ खींचे जाएं और दोनों जो है खुदा की तरफ से खींच जाएं और दोनों पश्चाताप में चले जाए, फिर कोई मुश्किल नहीं है, फिर तो वहां पर माफी आ जाती है, फिर वहां अनुग्रह हो जाता है, पर वहां पर ये समझ भी आ जाती है। और इसके बाद और अगर ये इस प्रकार नहीं है तब हमको इसको छोड़ देना है, जब तक के परमेश्वर हमें एक साथ, तब तक कि परमेश्वर हमारे मनों को ना घुमा दे। और इफिसियों 6 में लिखा है, इफिसियों 6 में मुझे लग रहा था कि यहाँ लिखा है बच्चों के लिए, हे बालको, पहली आज हे बालको प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बने रहो क्योंकि ये उचित है। ये देखिए कितनी अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि सबके साथ ये बात लागू हो और फिर और ये भी वचन पूरा हो जाएगा, हे बच्चो अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने रहो प्रभु में, क्योंकि जो विश्वासी बच्चे होते हैं वो भी आज्ञाकारी बने रहे, क्योंकि अगर नहीं बने रहेंगे तो अपने माता पिता की आज्ञा मानो प्रभु में, क्योंकि यही सही बात है, क्योंकि ये सही तब है जब प्रभु में माता पिता की आज्ञा मानो, अगर ये ऐसे पूरा हो। देखिए और हमने इन बातों को देखा है और अनुभव किया है, और इन समय में हम जानते हैं, हम पीछे मुड़ के देखना चाहते हैं कि एक यंग भाई जब मसीह आया, जब सवाल ये आया कि कौन, कि इस चर्च का अगुवा कौन बनेगा, तो कोई आ गया और बड़े उत्तेजित होकर आशा से आ गया, कहने लगा हाँ पर ये ऐसा सच नहीं है, ऐसा लिखा है ये बच्चे के बच्चे जो एल्डर के जो बच्चे हैं वो एल्डर के जो बच्चे हैं वो, और फिर उस भाई को मैंने बोला वेट करो जब तक कि तुम्हारे बच्चे ग्रो होकर के एडल्ट ना हो जाएं, वयस्क ना हो जाएं, जैसे जो खुदावंद के ओर से नियुक्त किए गए हैं। तब उसने कहा मैं तो इस वचन पर बना रहूंगा, और जब समय आया, काफी समय बीत गया, तब ऐसा भी हुआ, क्या हुआ, जब सैमुएल के साथ क्या हुआ, और सैमुएल तो एक नबी था, पहला काम उसके सामने आया जो खुदा ने उसको दिया, तो उसने उसे कहा पहले एली के पास जा और उसे कहा कि पहले वो अपने घर को ऑर्डर में करे, क्योंकि उसके जो बच्चे हैं वो परमेश्वर की राह पे नहीं चलते थे, ये बहुत मुश्किल काम था। और जब ये सैमुएल जो उस वक्त बहुत यंग था और उसने उस काम को किया जो प्रभु ने उसे कहा था, तब ये भी बढ़ गया, इसके पास भी बड़े बड़े बच्चे थे और ये भी बूढ़ा हो गया था, तब इज़राइल के जो एल्डर से इसके पास आए और उन्होंने कहा सैमुएल तेरे लड़के वाले वो प्रभु की राहों में नहीं चलते, और हमारे को एक राजा दे। देखिए कितने दुख की बात हुई, कितने बड़े की दुख की बात सैमुएल के सामने आई होगी, जब सब कुछ यंग था, नवी जवानी था, सब कुछ था, पर जब शादियां भी नहीं हुई थी, कुछ पता भी नहीं था, कितनी बड़ी बातें होनी थी, तो उस समय आदमी सोच सकता था। आप देखिए बाद में उस समय बीत जाने के बाद ये बहुत मुश्किल हो गया, उसके बाद हमको देखना पड़ता है और परमेश्वर में हमें शक्ति देता है कि हम उसके उस पर खड़े रह सकते हैं। और देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे मेरी शक्ति कहाँ से मिलती है, मेरा बल कहाँ से मिलता है। मुझे मेरा बल प्रभु के वचन से मिलता है। और ये अगर आपके ऊपर ये परिस्थिति हो तो आपको भी ये बल खुदावन के वचन से मिलेगा। अगर कोई आपके पास आए और अगर आपको गिरा भी दे, मार भी दे, आपको कष्ट दे दे और नीचे आपको गिरा दे आपके कष्ट और कठिनाई में, तब वो मनुष्य उस मनुष्य को आप रास्ता दिखा सकते हैं कि ये बंदा जो है ये मुझे परमेश्वर की ओर से नहीं भेजा गया। जो परमेश्वर की ओर से भेजा जाता है सबसे पहले बोले, सबसे पहले जब वो आपके घर में घुसता है वो सबसे पहले कहता है कि तुम्हारे घर पर सलामती हो, तुम्हारे घर में प्रभु की शांति हो। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि कितनी बार मैं इस प्रकार से मैंने जा करके अपने होंठों से लोगों के घरों में जा करके इस प्रकार की बातें की हैं और ये बताया है कि इस घर पर परमेश्वर की शांति हो। और अगर वहाँ पर परमेश्वर के बच्चे होंगे और अगर कोई ऐसा आ जाए जो खुद भी किसी और आत्मा के चलाए चल रहा है और किसी और परेशानी को लिए घूम रहा है या कोई और शरारत उसके बीच में है, हम ऐसे मनुष्य का स्वागत नहीं करते। जो मनुष्य परमेश्वर के सच्चे बच्चे हैं वो शांति और मेल कराने वाले होते हैं। ये वो लोग हैं जिनको कि परमेश्वर आशीष देता है और फजल देता है। एक और स्क्रिप्चर में पढ़ना चाहता हूँ। अब हम देखिए पढ़ते हैं दूसरा तिमोथी 3। यहाँ देखिए क्या बताया गया, यहाँ आखिरी समय के बारे में बताया गया जिसमें हम रह रहे हैं। जो भी हमने इफिसियों 6 में पढ़ा कि अपने माँ बाप का प्रभु में होकर आदर करना। आप देखिए यहाँ क्या लिखा है, दूसरा तिमोथी 3 में देखिए क्या, उसकी दूसरी आयत पढ़ो। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर और भले के बैरी, और विश्वासघाती, धीट और घमंड, जो पहली आयत नहीं पढ़ता उसको पता नहीं चलेगा ये कब हुआ कि ये जो बात लिखी गई है, ये उसको पता लगेगा कि ये कौन से समय के बारे में पहली आयत में कह रहा है, दूसरा तिमोथी 3:1 में। ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में, यानी कि आखिरी के दिनों में ऐसे कठिन समय आएंगे। पर हम तो आखिरी समय में रह रहे हैं और ये जो हमको पसंद नहीं है तो हम पर आ चुके, पर ये तो आखिरी दिन है। और इन आखिरी दिनों में ना सिर्फ के कि ये जो खुदावन के वचन का जो तरीका है इस पे गलती आ रही है, पर कि जो इंसानियत का भी जो तौर तरीका है वो भी उल्टा सीधा हो गया। और सुलेमान ने कहा था कि ये ना कहना कि पहले का समय बेटर था, क्योंकि ये बुद्धिमानी नहीं है। तुम्हें बुद्धिमानी नहीं, ये बुद्धिमानी से बातें नहीं आ रही, मैं इससे, मुझे इससे शर्म लज्जा नहीं आती। मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ, मैंने अपने पिता के पैर धोए। वो इतनी मेहनत करते थे, फार्म पे काम करते थे और जब वो घर आते थे थके होते थे, मैंने एक बर्तन में पानी लेकर के अपने पिता के पैर धोता था। जब मैं 12 से 13 साल का था मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी, मैं अपने पिता से बहुत प्रेम करता था। और ये इस प्रकार से है, जब मैं आज समय के बारे में सोचता हूँ मैं तो ये सोचता कि ऐसा कैसे हो गया। आप ये ना कहें कि दूसरे समय पहले से भले, और अगर मैं एक स्टेप आगे जाऊं तो मुझे ये अवसर हुआ कि उसी पिता को मैंने, अपने माता और पिता को प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा भी दिया। देखिए, और देखिए कई साल पुरानी बात है जो मैं पीछे मुड़कर देख सकता हूँ, कि मैं अय्यूब की तरह सोच रहा था कि प्रभु ने सारी चीजें बनाई हैं, और बहुत से लोग तो मुझसे दुश्मनी रखते हैं, अय्यूब के बारे में लिखा है, पर मेरे लिए दुखी ना हो, सिर्फ ये कहें कि प्रभु सब जानता है कि प्रभु क्या कर रहा है, और इसका जो अंत होगा, चाहे कितना कष्ट, कितनी बीमारी आ जाए, कितने दुख आ जाए, अंत में सब कुछ प्रभु ठीक कर देगा। और ये चीजें जो हैं, ये कुछ समय के लिए, हमें उन चीजों को छोड़कर जो कुछ समय की हैं, उन चीजों के पीछे अपना मन लगाना चाहिए जो हमेशा की हैं और अनंत की चीजें हैं। इस संसार की चीजें हमें रोकती हैं, पर अनंत की चीजें जो हैं वो हमें पकड़ कर रखती हैं और हमारे उद्धार को बनाती हैं, अनंत जीवन को हमको पक्का करती हैं। देखिए, ये निश्चय हमें करना जरूरी है, हमें प्रभु यीशु मसीह का मेल हमारे साथ हो चुका है, और हम तो उसके पीछे चलने की कोशिश करते हैं, हम उसके पीछे चलते हैं। और मैं ये जानता हूँ, अगर प्रभु ने हमें वो लोग दिए जो कि हमारे नजदीक हैं और हमारे संबंध उनसे जुड़े हुए हैं, और हम और प्रभु ने बना के रखे, और जो रैप्चर में जाने के तैयार हैं, एक समय आएगा जैसा कि अय्यूब के समय में आया, और एकदम से एक बार फिर से खुशी और प्रशंसा और शांति घर में आ जाती है। पर इस बीच में मैं अपने आप को प्रभु को अपनी पीठ नहीं दिखा सकता, नहीं, मुझे तो प्रभु के साथ चलना ही रहता है। और शैतान ने तो प्रभु को जाकर बोला, क्योंकि अगर तू इसके पास से वरदान छीन ले तो ये तुझे छोड़ देगा। पर प्रभु ने इस बात को सीरियसली सोचा कि अगर ये तू सोचता है कि ये बाद में मेरी सेवा नहीं करेगा तो देख क्या होता है। और पर उसकी आत्मा को हाथ न लगाना, उसकी जान को हाथ न लगाना, उसके शरीर को, उसकी सारी समृद्धि को हाथ लगाना। और शैतान ने उसके हर चीज को हाथ लगाया, उसके घर को, उसकी खेती बाड़ी को, उसके परिवार को, और उसके और वो भी उसकी उसकी स्त्री को भी इफेक्ट कर दिया, प्रभाव कर दिया। और तब अय्यूब ने क्या कहा, और उसने माँ और उसने और कितने दुख में वो अय्यूब, उसके फूले और फुंसिये फफोले निकले हुए थे, और उसके दोस्त लोग भी आकर के उसको क्या क्या कहना शुरू कर दिया उन्होंने, और उन्होंने और वो बड़े ज्ञानी विद्वानी लोग भी थे, पर उन्होंने आकर और उन्होंने एक हाथ से तो वो गले लगाते थे और दूसरे हाथ से पीछे से वो घात करते थे, और इस प्रकार से वो जोड़ लेते थे, दिखाते थे। ये हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें इस प्रकार का नहीं चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, आप किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी हालत में आप हो, मेरे भाई और बहनों, अगर हम प्रभु के बच्चे बेटे और बेटी हैं तो हमें आपके साथ इस बात को समझना है, और आपके साथ हमको आपको साथ लेकर चलना है। हम एक दूसरे का सुधार नहीं कर रहे, हम घरों में नहीं जा रहे, हम लोगों को ये तरीके नहीं समझा रहे कि ऐसा करो और ऐसा करो तो तुम्हारी समस्या सुलझ जाएगी। नहीं, हमारे पास तो अपने लिए, हमारे लिए तो अपने लिए होनी चाहिए, अपने लिए हमारे पास इलाज होना चाहिए। हमारे पास प्रभु का बाम है, प्रभु का ऑइंटमेंट और मलहम हमारे लिए है, जो कि हमारे दिलों को चंगाई दे सकता है, हमारे दिलों को ठीक कर सकता है। हम क्यों पढ़ते हैं ये, जितने स्क्रिप्चर्स हम क्यों पढ़ते हैं, ये वचन क्यों पढ़ते हैं, जिससे कि ये वचन हमको ये दिखाते हैं, क्योंकि हम अलग अलग परिस्थिति में होकर भी शांति प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी अपने अपनी परिस्थिति में अपनी इच्छा को खो ना दे, अपनी होप को ना खो दे, कोई भी इस तरीके से परेशान ना हो जाए। हमें ये याद रखना चाहिए अपने दिल में कि खुदावन हमने आपको बुलाया, खुदावन हमको बचाता है, और हमको परमेश्वर ने अपनी ओर खींचा है, और उसने हमारे दिल में, हम अपने दिल में परमेश्वर को पहली जगह दें और इस सच्चाई को पहली जगह दें, और हमने अपने आप को तैयार करना है इस बात के लिए, क्योंकि क्या प्रभु हमारे को इनाम नहीं देगा, उसने सब कुछ देख लिया है, वो सारे के सारे वरदान हमको देगा, हमारी सारी बातें वो देखता है और सुनता है, हमारी निगरानी करता है, हमारा ध्यान रखता है और समय आने पर सही काम करता है। ये नहीं, मैं नहीं और आप नहीं, हम ये घुमाव हम नहीं पैदा कर सकते, ये चेंज हम नहीं पैसा कर सकते, पर केवल प्रभु यीशु मसीह, वो जिसको के अधिकार सारे संसार में और सारी धरती पर दिया गया, उसने ऑलरेडी हमारे लिए अपना दान दिया हमारे गुनाहों के लिए, और जब तक के हम उस पर चलेंगे नहीं, तब हमको वो दान हम पर लागू होगा। और हम इस बीच में ये हमारे लिए जरूरी है कि हम प्रभु पर पूरा विश्वास रखें, और हम एक दूसरे से, हम जल्दी से एक दूसरे से झगड़ा कर लेते हैं, और फिर हम प्रभु से भी कहने लगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। और कुछ लोगों को तो इसका जवाब उस पार जाकर ही मिलेगा, हमें चाहे जवाब मिला या नहीं मिला, हम तो प्रभु की सेवा करते जाएं, उस पर विश्वास करते जाएं और उस पर विश्वास किए जाएं और उस पर उसके पीछे चलते जाएं और सब कुछ, और अगर जरूरत पड़ी सब कुछ हमारे पीछे रह जाए, अगर इसमें दुख भी हो रहा है, कष्ट भी हो रहा है, पर देखिए हम बढ़ते जाएं, और अगर हम देखिए अगर हम चलते जाएंगे तो इससे दूसरों को भी ये मौका मिलेगा, दूसरों को भी ये रास्ता दिखेगा कि वो भी पीछे हो लें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया, परमेश्वर ने अपनी ओर से खींचा कि हम अपने राह में प्रभु यीशु मसीह को लेकर चलें, उसके पीछे चलें, हम सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देते हैं, वो हमको सामर्थ दे सकता है, बल दे सकता है, और वो बड़ों को छोटा और छोटों को बड़ा कर सकता है, और वो उत्साह दे सकता है, और हमारा जो मन है, हमारा जो चरित्र है, हमारा जो सोचने का तरीका है, वो प्रभु की ओर लगा रहे, हम उस हर एक बात को छोड़ दें और प्रभु के पीछे चलते रहें। क्या हमने जानते, क्योंकि हमें तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है जब हम एक दूसरे से डील करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो बिलीवर हैं, विश्वासी हैं, वो क्योंकि कई बार विश्वासी लोग ही एक दूसरे के लिए रीजनेबल नहीं रहे, उनको ये नहीं पता इस बंदे के साथ हमें कैसा बर्ताव करना है, पर वो जानते हैं, पर वो उनको ये पता होता है बिलीवर को कैसे बिहेव करना है। और देखिए ये बात पता होना, ये विश्वासियों के साथ ऐसा नहीं होता, हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि हम किसी और गलत धारणा से तो शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे जो हमारे लिए सब कुछ और बन जाए, पर हम दूसरों के लिए वरदान बने रहे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और यहाँ पर एक और जो चीज में विपरीत तरीके की बात लगती है, ये मैं बताना चाहता हूँ, मत्ती की इंजील में, और वहाँ पर जो पहाड़ी वास में प्रभु ने हमें बताया, और ये कहता है मत्ती 5 और उसकी 21 आयत, मत्ती 5 और 21 में प्रभु कहता, मत्ती 5 और 21, मत्ती 5 और 21 में लिखा है, 5:21 में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि पूर्वकार के लोगों को कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, पर मैं तुमसे कहता हूँ 22वीं आयत में, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा के दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। देखिए यहाँ कितनी गंभीर बात लिखी है, और कितनी जल्दी है, कितनी जल्दी से कोई भी बिलीवर विश्वासी एक दूसरे को कुछ भी ऐसे शब्दों से कह देता है और जो हमारे मुंह में नहीं होनी चाहिए, और वो कह देता है ऐसा लिखा है जब, क्योंकि इफिशियंस 4 में लिखा है, 4:30 में, कि हमारे मुंह से कोई गलत बात हमारे मुंह से ना निकले। मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूँ, एक कंपैरिजन बता रहा हूँ, एक तुलना कर रहा हूँ, आप समझ गए कि अपने दिल में इस बात को अच्छी तरह समझ गए। मैं यहाँ कोई जजमेंट करने के लिए नहीं खड़ा रहा हूँ, यहाँ तो जो कलाम मैं पढ़ रहा हूँ, जो वचन मैं पढ़ रहा हूँ, ये हम सबके दिल को छूता है और ये हम सबके दिल पर अप्लाई होता है, और हमें अपने आप को जांचना है प्रभु के सामने। और ये बात है, यहाँ पर ये लिखा है, जो ये बताता, जो अपने भाई को कहता हे मूर्ख, वो तो हेल फायर के डेंजर में, यानी के नरक की आग के का भोगी होगा, आप जानते हैं। और यही प्रभु किसने कहा था, उसने खुद ही अपने मुंह से ये वर्ड बोले थे। और फिर हम पढ़ते हैं, और लूका 12 में देखिए क्या पढ़ते हैं। देखिए आज हम तुलना के बारे में देख रहे हैं, लूका 12 20, यहाँ लिखा है, और परमेश्वर ने कहा मूर्ख, इसी रात ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, और जो तूने इकट्ठा किया है किसका होगा। यहाँ देखिए, प्रभु ने हमें बताया कि किसी को मूर्ख न कहना, अपने भाई को कभी मूर्ख न कहना, क्योंकि उसमें तो नरक का पनिशमेंट लिखे। और यहाँ पर प्रभु खुद अपने मुंह से कह रहा है, उस आदमी को कह रहा है मूर्ख, आज रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। यहाँ देखिए क्या डिफरेंस है, कि आपको समझ आया इसमें डिफरेंस क्या है, कि क्या समझ आया, ये दो अलग बातें हैं। एक तो मेरा भाई है जो यीशु मसीह में मेरा भाई है, और जिसको खुदा ने माफ कर दिया है, जिसका सब कुछ माफ कर दिया गया, और जिसके ऊपर अब कोई भी इल्जाम नहीं लगा सकता, और एक दूसरा इंसान आए और उसको कह दे अपने भाई को जो यीशु मसीह में, कि तू मूर्ख है, तो वो उसने तो उस चीज को मिटा दिया कि जो क्रूस पर हुआ था, तब तो वो उसे नहीं देख पाता जो यीशु मसीह ने हमें कलवरी से देखा, किस प्रकार के लोग थे हम, और हमारा हमें रासबाज ठहरा दिया, हमारा उद्धार कर दिया। हाँ देखिए, दूसरा जो केस है जो अभी हमने पढ़ा लूका बारे में, यहाँ तो प्रभु जो उसे कह रहा है वो ठीक ही कह रहा है, क्योंकि वो तो गैर ईमानदार आदमी है, और इसीलिए प्रभु वहाँ उसे मूर्ख कह के संबोधित कर रहा है, जो उसके विश्वास को ग्रहण नहीं कर, नहीं वो भाई जो है वो मूर्ख नहीं है, भाई मूर्ख नहीं हो सकता, वो तो अकलमंद है, क्योंकि उसने तो प्रभु को जान लिया, प्रभु को स्वीकार किया। जो अविश्वासी है वो मूर्ख है, जिसने प्रभु को नहीं जाना, प्रभु को नहीं ग्रहण किया, नहीं पहचाना। प्रभु के पास सारा अधिकार है कि वो जो गैर ईमानदार है वो दोबारा पढ़ ले, जो विश्वासी नहीं है अपने सिर को हिला ले और कह दे ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर ये ऐसा लिखा है और वहाँ ऐसा लिखा है, ये दो अलग बातें हैं। क्या लिखी है यहाँ पर, देखिए दोनों का संदर्भ है, दोनों का एक कॉन्टेक्स्ट है, दोनों की एक प्लेसी है, और दोनों बातें अपने में सच हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए, जो यहूदा की पत्री है उसके 5वें, याकूब की पत्री उसके 5 आयत में, वहाँ पर खास तौर पर बताया गया, हमारे को सिखाने के लिए बताया गया, जिसे हमें समझना है, याकूब पांच और सात, इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज रखो, कि किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता है, प्रथम और अंतिम होने पर धीरज रखता है। तुम भी धीरज धरो, अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। एक दूसरे पर दोष मत लगाओ भाइयों, ताकि तुम दोषी ना ठहरो। अब देखिए, इसके बाद हम खोलते हैं रोमियो आठ में अगर हम जाते हैं। रोमियो आठ में देखिए लिखा है, हम रोमियो आठ में देखिए क्या लिखा है। यहाँ दो अलग बातें लिखी हैं।
देखिए,
एक तो उस आशा को बता रही है जो प्रभु के आने की आशा है, कि जो सारी की सारी कायनात है, सारा संसार है, वो तो बुरे चरित्र में बंधी हुई है, जिसमें से कि प्रभु की संतान जो है वो महिमान्वित होते हैं। और दूसरा निशान ये है, और वहाँ पर दूसरी बात ये लिखी है कि एक दूसरे पर दोष ना लगाओ, जैसा अभी हमने याकूब में पढ़ा। यहाँ देखिए दोनों बातों में कितना महान अंतर है। क्या हम दोष लगा रहे हैं, किसी भाई पर दोष लगा रहे हैं, और क्या हम उस चीज के लिए करा रहे हैं, उस चीज के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, जिस दिन के हमारा हमें नहीं और सारी का सारे कायनात, सारे संसार, सारी सृष्टि उसके अंदर शामिल हो जाए। ये हमारे अंदर कौन सा चिन्ह पाया जाता है, कौन सा निशान पाया जाता है? मैं कहूंगा, मैं रोमियो आठ के हिसाब से मेरे अंदर मेरे विचार पाए जाने चाहिए, मेरे विचार, और या मेरे ऊपर जो निशान है, क्या वो याकूब पांच के हिसाब से चलेगा कि रोमियो आठ के हिसाब से चलेगा? ये सोचना बहुत जरूरी है। क्या मैं भाई पे दोष लगा रहा हूँ, क्या मैं दोष लगा रहा हूँ, और या मैं सृष्टि के साथ में इस इंतजार में हूँ कि प्रभु से मेरा मेल हो जाए, या मैं करहा रहा हूँ कि आत्मा में मैं करहा रहा हूँ जो प्रभु ने हमारे अंदर डाली है, जिससे कि हम एक दूसरे से कब हो गया ये हमारे प्रभु तो कब आएगा, जब तक के हर चीज का हे प्रभु जब प्रभु कौन सा समय है प्रभु हम इस चीज को भूल जाएं, हमारे साथ पहले चीजें सही हो जाएं और प्रभु के साथ हमारा संबंध सही चले, और तो सारी दुनिया के साथ हमारा संबंध सही चले, तब मेरे को ये विश्वास है कि हम एक दूसरे के साथ में, अगर हमारा प्रभु के साथ संबंध सही है, तभी हम एक दूसरे के साथ भी हमारा संबंध सही हो जाएगा। जब तक कि हम व्यक्तिगत रूप से प्रभु के साथ हमारा संबंध सही नहीं होता, तब तक दूसरों के साथ भी सही नहीं होगा। अगर हम जो आज हम यहाँ पर हैं, और हम जो प्रभु के नाम को बुलाते हैं और पुकारते हैं, उसके नाम को लेते हैं और उसके वचन से प्रेरित करते हैं, अगर हम खुद अपने आप को खुदा के साथ ऑर्डर में कर लें, तब तो जो आत्मिक तरीका जो है वो तो पूरी कलीसिया में स्थापित हो जाएगा। हमने पहले भी कहा था, न केवल आत्मिक बल्कि जो सामाजिक जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है, ये भी ऑर्डर में आ जाएगा अगर हमारा रिश्ता प्रभु के साथ सही है। और ये जो कलीसिया है, ये एक बार फिर से वापस अपनी उस बहाली की हालत में, वापस उसी कंडीशन में आ जाएगी जो इसकी शुरू की कंडीशन थी। और मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी कीमत देनी पड़ जाए, ये जो अंत का समय है, ये जो समय ये मैसेज लाया, ये हमारे बीच में कलीसिया में एक आत्मिक तरीका, एक आत्मिक शिक्षा को लेकर आया। और इब्रानियों में लिखा है हम तो प्रभु का मंदिर हैं, और इस प्रकार से वो जो डिवाइन ऑर्डर है, वो जो तरीका है, वो हमारे अंदर आत्मिक तरीका लागू होना चाहिए। तब ही सारा संसार आपके लिए तरीके में लागू हो जाएगा। अगर हमारा तरीका सही है तो एक ही बात रह जाती है कि प्रभु के साथ हमारा कनेक्शन सही रहे, हमारा संबंध सही रहे। अगर हमारा संबंध उसके साथ सही है तभी हम उससे आशीष प्राप्त करेंगे, तभी हम एक दूसरे के लिए भी आशीष बन जाएंगे। हम में से कितने हैं जो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रभु के वचन के लिए जो हम देख रहे हैं, आमीन 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 आमीन। हम बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, हमने सुन लिया, हमने ग्रहण कर लिया, और हमारे लिए ये ऐसा पूरा हो जाएगा जैसा प्रभु ने कहा था। हम इस बात को ग्रहण करेंगे, अनुभव करेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी अलगाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। हर चीज अपने तरीके में है, अपने अपने नियम से लागू हो रही है। जो जिनका अपना नियम सही है, जो प्रभु के साथ उसके नियम में सही है, चाहे वो प्रभु हमको दे, प्रभु हमको अपनी शांति दे। और अब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के लिए हम दोबारा खड़े होते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम में से कोई भी हमें से खुश हो जाए, हम अपने आप को जांचते हैं प्रभु, और तेरी पवित्र कि हमारे साथ, क्योंकि तू पवित्र है, और प्रभु हम भी जांचे कि हम कहाँ खड़े हैं, और हम इन तुलनाओं को समझ सकें कि वचन में ये जो तुलनात्मक बातें कही जाती हैं, जो कंपैरिजन के, क्या वो विश्वासी से कही गई हैं या अविश्वासी से कही गई हैं। पर प्रभु, जिन्होंने तेरे सामने एक अनुग्रह पाया है, उनको इस वचन की हर बात सही सलीके से, सही तरीके से, सही नियमावली से समझ में आती है। प्रभु, हम किस प्रकार से तेरा धन्यवाद करें, हम किस प्रकार से कह पाए कि तूने हमको क्षमा दे दी, तूने हमें क्षमा दे दी। हम कौन हैं हे प्रभु कि तू हमसे बात करे जैसे कि एक मित्र अपने मित्र से बात करता है। हम कौन है प्रभु कि तेरा आत्मा हमारे अंदर अपने वचन, तेरे वचन को हमारे अंदर जागृत कर देता है, और इस समय में और हमारी आत्मा के अंदर गहराई से काम कर रहा है। हम जानते हैं प्रभु कि तेरा वचन जो है, ये तो जो तलवार से भी ज्यादा, दो धारी से भी तेज है, और ये जानता है कि कहां किस चीज को कैसे बांटना है, कैसे अलग करना है, और जो आत्मिक तत्व है उसको बाहर लेकर आता है। यहाँ पर हम हैं प्रभु, काल के परमेश्वर, हम तेरे सामने उपस्थित हैं, और जैसा कि हम हैं, कोई अपने आप को लंबा नहीं कर सकता, हम कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं प्रभु, और हम अपने जन्म से ही अभी तक इस समय में तब अभी तक तूने हमें चलाया बड़े साहस के साथ, बड़ी आशा के साथ, और हम जानते हैं प्रभु ये सारी जो शिक्षाएं हमने मिल गई, बहुत थोड़ा सा आत्मिक जीवन अभी अनुभव में आया है। हे प्रभु, हम बड़ी प्रार्थना लेकर आते हैं कि तेरा वचन जो हमारे अंदर बोया गया, और इन सारे प्रवचनों के द्वारा ये सारा पक जाए, और तेरी आत्मा के द्वारा इसके अंदर से ऐसा ऐसा सोता फूट जाए, ऐसा जीवन बहा जाए और उस प्रकार का अनाज का बीज निकल आए जैसा के और कई गुना उसमें से फल आए। हे प्रभु, हम तो नए सिरे से पैदा हुए हैं हे प्रभु, और हम तो तेरे बेटे और बेटियां बन गए हैं प्रभु। हम अभी भी इस जीवन में हैं और इस मुश्किल में हैं प्रभु, पर हम जानते हैं कि तेरा जो आत्मा है वो हमारे ऊपर आगे रहे, हमारी चीज में हर चीज आगे रहे, पहला स्थान पाए और फिर और हमारे जो शरीर है उसके ताबे में रहे और तेरा आत्मा हमारा अभिषेक करे और हमें अच्छी हमें भली भांति इस्तेमाल करे, क्योंकि उन सभी कामों के लिए हे प्रभु और जो हमने सुना ये कभी वापस ना जाए खाली, पर ये तेरा वचन उस सारी चीज को हासिल कर पाए, कामिल कर पाए, पूरा कर पाए जिसके लिए भेजा जाए। हम तो इस पर विश्वास रखते हैं। तूने हमको अपनी ओर खींचा है, बुलाया है प्रभु, और तूने हमसे बातचीत करी। हम समझ गए हैं प्रभु, तेरी बात को समझ गए हैं। हमारे मन अभी भी हमारे दिल इस चीज से गर्म है तेज हे प्रभु, हे वफादार प्रभु, और अपने लोगों को ऊपर उठा, इस श्वास में उठा, अपनी शांति हमें दे, अपना बल हमें दे, और प्रभु तेरा अनुग्रह और तेरा वरदान और आशीषें हमारे साथ बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम ये मांग लेते हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन, 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 आमीन।